बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं ना दो बिहेवियर्स को टारगेट कर रही हूँ जो कि ये वो बिहेवियर्स हैं जो मिलते जुलते हैं। और एक पहले होता है थोड़ा समझ लें लेस इंटेंसिटी का, और अगर उसको सही तरह से हैंडल ना किया जाए तो वो बड़ी इंटेंसिटी का मसला बन जाता है। लेस इंटेंसिटी में क्या है कि जब बच्चा बात नहीं सुन रहा, और ज़्यादा इंटेंसिटी कब हो जाती है जिसको हम कहते हैं डिफाइंट बिहेवियर बन जाता है। अच्छा, पहले हम इसको समझते हैं कि लेस इंटेंसिटी का क्या है। एक बड़ा टिपिकल सीन होता है कि माँ क्या कह रही होती है कि मैं काम कर रही हूँ, बच्चे को आवाज़ लगा रही हूँ, चाहे होमवर्क के लिए, ब्रश करने के लिए, टीवी बंद करने के लिए, कोई भी और काम करने के लिए, वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे उसको आवाज़ ही नहीं आई। यानी कि अपने मतलब की बात बच्चा सुन लेता है, लेकिन जो बात उसने नहीं करनी ना उसको वो ऐसे एक्ट आउट करता है जैसे उसको आवाज़ ही नहीं आई है। और बच्चे बात नहीं सुनते हैं। बच्चों को समझाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए जो बहुत बड़ी बेसिक टिप दी जाती है वो ये है कि आपने क्या करना है कि कम बोलना है और ज़्यादा करवाना है। अगर हमें ये असूल समझ आ जाए तो शायद हमारे बहुत से मसले आसान हो जाएं। हम क्या करते हैं कि अगर बच्चा नहीं कर रहा ना कोई काम तो हम तकरीर शुरू करते हैं। तो इसमें ये समझना है कि बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े एक्सपर्ट हैं सिलेक्टिव लिसनिंग के। इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। वो क्या करेंगे कि जब उनके मतलब की कोई बात हो रही है तो वो बहुत शौक से सुनेंगे, उनका बड़ा इंटरेस्ट होगा, वो तवज्जो देंगे। अब उसमें से आप बेस्ट कैसे निकालेंगे, क्या क्या करेंगे? नंबर वन, आपको मॉडल करना है गुड लिसनिंग। आपने बच्चों की बात गौर से सुननी है, शौहर की बात गौर से सुननी है, फ्रेंड या कोई भी, इवन मुलाजिम, घर में जितने लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब भी आपको बात करनी है आपने गौर से सुननी है, क्योंकि बच्चे आपसे सीख रहे हैं। हम ना कई दफ़ा कहते हैं एक्चुअली खाना भी तो बनाना है ना, वो छोटा बच्चा भी बुला रहा है ना, मतलब आप पुट अवे एवरीथिंग, लुक टूवर्ड्स द चाइल्ड और उसकी बात सुनी और फिर काम किया। इवन आपने स्टोव पे कोई चीज़ रखी है, बजाय इसके कि बच्चे को कहा कि बोलते जाओ मैं सुन रही हूँ, चम्मच हिला रही हैं, आप क्या करेंगी, आप स्टोव को थोड़ा हल्का करके आप उसकी तरफ टर्न होके पूछेंगी, जी दिस इज
नॉर्मली द डिमांड ऑफ द किड्स एज वेल ना, कि वो कहते हैं कि मेरी तरफ देखें और बात करें,
मेरी तरफ देखें, आपने सुना ही नहीं। हम कहते हैं मैंने सुन लिया है, सुन लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे से जब भी बात करनी है रिस्पेक्टफुली बात करनी है। कम्युनिकेशन ब्लॉक्स हैं जिनको हमने अपने ऊपर, जिसे कहते हैं फ़र्ज़ के दर्जे पे लेना है कि ये मैंने नहीं करना। क्रिटिसाइज़ नहीं करना बच्चों को, चाहे लिबास के मामले में, पढ़ाई के मामले में। आपको कोई मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ नज़र आ रही है तो मैटर ऑफ फैक्ट उसको बतानी है, लेकिन हम उसको फ़ौरन क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऑर्डर फ़ौरन करो, जैसे मैं कह रही हूँ करो। प्रीचिंग, लेक्चर शुरू हो जाता है, अल्लाह का हुक्म, हमारे बुज़ुर्ग तो जब करते थे तो हम ऐसे करते थे। ओपिनियन गिविंग, नहीं मेरा तो नहीं ख्याल कि इस वक्त उसको ऐसे महसूस होना चाहिए। फिर जजिंग, इसने जान के किया है। जजमेंटल तो मदर्स बहुत ज़्यादा हैं, अक्सर इंसिस्ट करती हैं कि नहीं आपको नहीं पता, ये जान के ऐसे करता है, ये जान के नहीं सुन रहा होता, मुझे पहले ही पता था कि तुमने नहीं करना, ये तो तुम हो ही ऐसे। थ्रेटनिंग, अगर तुमने ये किया तो मैं ये करूँगी। येल करना, अच्छा फिर कई माएँ प्लीडिंग पे आ जाती हैं, प्लीज़ कर लो ना, देखो ना, अच्छा मैं तुम्हारे लिए लज़ानियाँ बनाऊँगी, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा मंगा दूँगी, मैं तुम्हें पार्क लेके जाऊँगी। ये सारे स्टाइल जो हैं ये मना हैं, यानी ये नहीं करने। प्लीज़ इज़ डिफरेंट, वार्न करना डिफरेंट कि आई डोंट लाइक इट दिस वे। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हम सारे काम कर रहे होते हैं ना, इससे क्रिटिसाइज है, ऑर्डर, प्रीच और ये बाकी जो चीज़ें कम्युनिकेशन ब्लॉक्स की, हम आउट ऑफ डेस्परेशन करते हैं, क्योंकि हम बच्चे के लिए परेशान होते हैं, हम चाह रहे होते हैं मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और हमें नहीं समझ आ रही होती कि हम क्या टोन यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या जुमला बोल रहे हैं। तो अपने जुमलों को ज़्यादा असेस करना है बजाय इसके कि बच्चे का रिस्पॉन्स को असेस करें कि देखो मैंने तो सिर्फ ये कहा था दूध पी लो, उसने आगे से रोना शुरू कर दिया। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये हिजाब पहन लो, नमाज पढ़ लो, उसने इतनी बदतमीजी की मुझसे। लेकिन वो जो हमने टोन यूज़ की होती है ना उसको हम असेस नहीं करते कि हमने कैसे कहा होता है। अच्छा फिर ये है कि आपने अटेंशन पहले देनी है और बात बाद में करनी है। यानी आप बच्चे को फुल तवज्जो के साथ देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो परेशान है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, वो अवॉइड कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ अपसेटिंग है, यानी उसको असेस भी करना है कि क्या ये मौका सही है, क्या ये बात मुझे इस वक्त कहनी है या बाद में कह दूँ। मतलब कोई एक बेज़रर सी बात है, कई दफ़ा हम उसी को इशू बना लेते हैं। कि आप बच्चे को वार्निंग भी दे सकते हैं, मसलन आपने अगर बच्चे से कोई बात करनी है, बच्चा नहीं सुन रहा, तो आप कह सकते हैं कि मुझे आप 2 मिनट्स के बाद आपकी अटेंशन चाहिए, मुझे 10 मिनट्स में ये चीज़ बंद चाहिए। आप मेरी बात सुनने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो मर्जी कर रहा है आप उसे करने दें, सिर्फ यूजिंग द राइट टेक्निक्स।
जब डेडलाइन पे ना बनते हैं तो फिर क्या करना?
आप आराम से जाके उसका टीवी मसलन ऑफ कर दें, गेम उतार दें और बोलें कुछ ना। और अगर बच्चा चीखता है या कुछ कहता है तो आपके आई एम सो सॉरी बेटा टाइम हो गया था ना, आपकी टोन बहुत माइल्ड होगी, आपको आउट नहीं होना, आपको इन ही रहना है और आपको कॉन्शियसली इन रहना है। और प्लस अगर वो अपसेट है तो नो प्रॉब्लम, लेट हर बी अपसेट, लेकिन आप नहीं होंगी, आप सुबह ऐसे एक्ट करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप अगर फिर उसको एक्सप्लेन करने चली गई, देखो तुमने सोना था, देखो तुम सोई नहीं, देखो फिर ये नहीं हुआ, यू आर डन विद इट, इज पैक्ड अप, जो बात होनी थी वो ख़त्म होगी उस वक्त। कि आपकी टोन जो होगी जब भी बात करेंगी लो होगी, ये बहुत ज़रूरी है जब आप चाह रहे हैं बच्चों से कि बच्चे आपकी बात सुने। जितना आप चीखेंगे उससे बच्चों को साइकोलॉजिकली क्या पता चलता है, यू आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, आपसे हैंडल नहीं हो रही सिचुएशन, और ये उनके लिए बहुत मज़े की बात है। एक होता है ना शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखना, एक होता है लॉन्ग टर्म देखना। तो आपने फ़ौरन दोनों बिहेवियर्स के साथ अपने देखना है कि मुझे शॉर्ट टर्म रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है और लॉन्ग टर्म कहाँ से मिल रहा है। फिर इसके बाद ये है कि कीप इट शॉर्ट स्वीट एंड स्पेसिफिक, यानी होमवर्क करवाना है तो लंबा लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ आवाज़ आएगी होमवर्क। अब आप ब्रोकन रिकॉर्ड बन जाएं, जब बच्चा आपके पास आ रहा है मैं टीवी देख लूँ, आप एक ही वर्ड बोल रही, होमवर्क, क्लीनिंग, ब्रशिंग, नमाज, रीडिंग, जो भी बोलना है आप बस यही एक लफ्ज़ बोल रही है। जितना लंबा आपका लेक्चर होना शुरू हो जाएगा उतना आप समझें आपका कंट्रोल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है बच्चों के ऊपर से।
वो फिर लेक्चर में से फिर वो उनकी आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती
है। यस बिल्कुल,
आर्गुमेंट में तो उनसे इंसान जीत नहीं सकता।
बिल्कुल, इस बिहेवियर के लिए अब आप क्या करेंगे, आपने खास तौर पे जब हल्का फुल्का बच्चों का ये मसला आपका चल रहा है तो आपने देखना है कि कोई कम्युनिकेशन ब्लॉक तो नहीं है आपके उसमें, और अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो उसको ठीक करें। आप देखेंगे आपके बच्चे आपकी बात ज़्यादा सुनना शुरू कर देंगे। अब मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊंगी डिफाइंड बिहेवियर की, कि डिफाइंस क्या होती है। डिफाइंड बिहेवियर वो होता है, एक तो ना कि बच्चा छोटी छोटी बातें कभी कभी नहीं सुनता, डिफाइंड बिहेवियर वो होता है जिसमें बच्चा आपको पागल कर देता है। इतनी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इतनी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आप उससे कोई बात नहीं कर सकते, आपको लगता है आपके घर में हर वक्त जंग का समा है, दैट इज़ डिफाइंड बिहेवियर। यानी अगर आपने ग्लास रखा है तो वो कहते हैं ग्लास नहीं रखना था, कप रखना था। आपने कप रखा है तो कहते थे प्लेट चाहिए थी, कमरे में क्यों आ गई, वॉशरूम क्यों आपका यूज़ कर लिया। आपने ग्रीन कलर का पहनने के लिए तो उसने रेड पहनना है। ये वो बच्चे हैं जो अब क्योंकि आपसे मिस हैंडल हो चुके हैं और वो अब एक एक्सट्रीम बिहेवियर की तरफ जा चुके हुए हैं। ये माँ बाप के रिसोर्सेज पे या जो भी केयर टेकर है उसके रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा ड्रेन होता है, यानी उनसे वो हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है, डिफाइंड बिहेवियर को आपने एक्सेप्ट नहीं करना, इसके ऊपर गिव अप नहीं करना। इसके लिए जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की जाती है वो ये है कि आपने ये भी समझना है कि थोड़ा बहुत बच्चे ज़रूर लाइन को क्रॉस करेंगे किसी न किसी मौके पे, कभी ना कभी किसी सिचुएशन में वो डिफाइंड हो जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका बच्चा बिल्कुल ख़राब हो गया, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पेरेंटिंग शायद आती ही नहीं है। कई दफ़ा देखें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है या बच्चे के लिए या आपके लिए, या कभी कभी आप नहीं कैलकुलेट कर पाते और वो एक ऐसा बिहेवियर आ जाता है, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। शुरू में अगर कभी कोई 2-4 एपिसोड्स हो तो उसको आपने नॉर्मल लेना है, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है। इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाती है डिफाइंड बिहेवियर के लिए वो ये है, जितने आपके घर में रूल्स रेगुलेशन सही होंगे और री इन्फोर्स्ड होंगे उतना ज़्यादा डिफाइंड बिहेवियर डेवलप नहीं होगा। ज़्यादातर उन घरों में डिफाइंड बिहेवियर डेवलप होता है जिनमें जो पेरेंट्स होते हैं ना वो पैसिव होते हैं, वो बहुत जल्दी बच्चे के आगे झुक जाते हैं, बच्चे को कह नहीं पाते कोई चीज़, तो बच्चे को लगता है कि मेरा जो दिल चाहता है ना वो मुझे मिल जाता है। असर्टिव नहीं होते पेरेंट्स। उसके लिए होता है कि आप ना सिग्नल्स बनाते हैं अपने लिए, तो हम रेड लाइट पे क्या करते हैं, रुक जाते हैं, ग्रीन पे क्या करते हैं, चलते हैं, और येलो पे या रुकना या स्टार्ट या जो भी है, तो आपको अपने घर में बड़ी क्लियर रेड लाइट दिखानी है, क्लियर ग्रीन लाइट दिखानी है, और कुछ एरियाज हमेशा अपने कंट्रोल में रखने हैं जो कि येलो लाइट है. बच्चों को पता होना चाहिए कि दीज सर्टन थिंग्स आर नो वे के मेरी माँ या बाप मानेंगे. और ये क्लैरिटी माँ बाप के अंदर होनी चाहिए. माँ बाप ही जो है ना वो बेचारे के हाय अब अच्छा नाराज हो गया बच्चा, उसका मूड खराब हो गया, उसको दे देते हैं. पहले नो नो किया फिर उसको यस हो गया. अगर आपने नो किया है तो सोच समझ के नो बोलें. बात हो जाएगी. बहुत से एरियाज आपके ग्रीन होने चाहिए जो बेजरर हैं. आप अपने बच्चे को जरूर इजाजत दे देते हैं. हम अपने बच्चों को वो ग्रीन एरियाज नहीं दिखाते, इसलिए हमारे बच्चों को लगता है कि हमारी जिंदगी बड़ी तंग है, हमें किसी चीज की भी इजाजत नहीं है. तो आपकी प्रायोरिटी सही होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर मैं किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं थोड़ा बहुत बच्चों को मार्जिन दे दूंगी. और वो येलो लाइट वाले एरियाज कौन से आपके होते हैं? वो एरियाज होते हैं जिसमें ना, जैसे मसलन किसी दिन बच्चे ने कहा कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा ना बैग पैक करने को, तो आपने कहा चलो ठीक है सो जाओ कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ. कभी आपको लगा कि हाँ आज हम गए थे थके हुए थे, बच्चा बीमार था, आज इसके एग्जाम थे, आज इसकी असाइनमेंट थी, लेकिन ये ज़रूर आपने अलर्ट होना है कि उसको आदत ना पड़ जाए उन चीज़ों की. जहाँ लगा आदत पड़ने लगी है उसको फ़ौरन रोका कि नहीं बेटा ये तो दिस इज़ नॉट ऑन, ये काम नहीं आप कर सकते. अब इसके लिए आपने क्या करना होता है कि ऐसे डिफाइंड बिहेवियर के लिए आप उनको बताते हैं कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन. बड़ी क्लियरली स्टेट करते हैं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और अनलेस आपके पास कोई रीज़न है इसको नहीं करने का, ये आपको करना पड़ेगा. यू डोंट हैव अ चॉइस. इस पर चीखेंगे नहीं, वही चीज़ें याद रखनी है. कम्युनिकेशन ब्लॉक्स नहीं तो फिर तो आप मिस हैंडल खुद ही कर रहे हैं. लो टोन, आराम से बात की, सामने देखा कहा बेटा ये काम तो आपको करना पड़ेगा. फिर उसके बाद आपने रिस्पेक्ट का मॉडल उनको बहुत ज़्यादा देना है. और मेरा स्टैंड ये होता है कि इस कुरान क्लास में तुम्हें जाना ही जाना है, बाकी कुछ करो ना करो, इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कुरान जाता रहता है, साथ आप दुआ करते रहते हैं वो असर करता है. आप इस डिफाइंड बिहेवियर में बिल्कुल ना छोड़ें. ये ना छोड़ें कि अच्छा चलो जी फिर कुरान भी छोड़ दो. ठीक है तुमने नहीं पहना हिजाब, ना पहनो. नमाज कहते रहना है आपने कि बेटा नमाज पढ़ो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको इरिटेट कर देते हैं. आपने नमाज का कहना छोड़ना नहीं है, आपने हिजाब का कहना छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखें गिल्ट जरूर देना है अपने बच्चों को कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट राइट. डिफाइंड बिहेवियर में मैंने आपको बताया एक तो पैसिव पेरेंट्स, दूसरा मैंने आपको बताया था रूल सेटिंग क्लियर नहीं है. आपने हर चीज को इधर नो कर दिया है या हर चीज को यस कर दिया है. जो मैं भी आपको बताई थी ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल येलो सिग्नल, उनको डिफाइन नहीं किया.
रोल मॉडल सही नहीं है.
अब इसमें आप करेंगे क्या कि अब आपने क्या करना है, वही बात है ब्रोकन रिकॉर्ड रहना है. आपने अगर कोई चीज आप चाह रही है कि ऐसे हो तो आपने बोलना है कि मतलब मेरे लिए एक्सेप्टेबल बिहेवियर है. फिर आप उसको चॉइसेस ऑफर करेंगे खुद भी. कभी कभी अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं कि मैं ये कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ तो तुम भी ये करो. मतलब आप कहें अच्छा ठीक है डोंट वेयर हिजाब बट यू हैव टू गो टू दिस कुरान क्लास. मेरे लिए बहुत पेनफुल है कि मैं जिस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझती हूँ आप नहीं कर रही, तो आप ये तो कर सकती हैं. मैं बोर होती हूँ, मुझे समझ नहीं आती, कोई बात नहीं ना समझ आए इट डजेंट मैटर, आप जाएं. मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन नमाज पढ़ो. बच्चों को ये ज़रूर बता देना है कि ये चीज़ें ना टॉलरेबल नहीं है ना, रेड एरियाज हैं वो आपने ज़रूर उनको बता देना है कि ये आप कुछ भी कर लें, ये इस घर में रहते हुए ये टॉलरेबल नहीं है. डिफाइंस बिहेवियर को हैंडलिंग के लिए जो एक प्लान बनाने की बात होती है, उसके लिए क्या होता है, अपने ऊपर समझें कि मूवी बन रही है आपकी, और मूवी में आपने क्या क्या देखना है. आपने ये देखना है कि बच्चे का बिहेवियर कब था, क्यों था, क्या था, आपका रिएक्शन क्या था, आपने उसको हैंडल कैसे किया. और अगर तो सही हैंडल हुआ तो उस बिहेवियर को आपने बढ़ाना है. अगर आपको लग गया ऑटोमेटिकली कि बच्चा तो ये था और मैं ऐसे कर रही थी, अब आप क्या करेंगे, अब आप उसमें अनदर बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स सोचेंगी. नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करेंगे, क्योंकि वो डिफाइंड बिहेवियर बार बार आ रहा है ना, बच्चा रिजिस्ट कर रहा है आपको. अब आपने एक नई चीज़ ट्राई करनी है. आपने नई चीज़ ट्राई की, अगर वो वर्क की उसको एक्सपेंड करेंगे, अगर वो नहीं वर्क की फिर सोचेंगे अच्छा ये भी वर्क नहीं की अब क्या करना है. और ट्रस्ट मी, हम थोड़ा सा ज़रा लंबा सांस लेके थोड़ा सा ज़रा हिकमत के साथ आप सोचें, लॉन्ग टर्म रिजल्ट पे नज़र रखें, बहुत से ये मसले हल हो जाते हैं. और आपको पता है कि क्योंकि अब पेरेंट्स को सही मॉडल नहीं करना आता, सही रूल्स की एप्लीकेशन नहीं आती, तो ये डिफाइंड बिहेवियर बहुत बढ़ता जा रहा है बच्चों में. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.